हाय बड़ी, वेलकम टू वाई रीड बुक्स पॉडकास्ट। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। मैं यश माकड़ आज के इस एपिसोड में आपसे एरिक टोल द्वारा लिखित बुक द पावर ऑफ नाउ के बारे में बात करूंगा कि आपको यह बुक क्यों पढ़नी चाहिए, वे कौन से 5 ठोस कारण हैं जिनकी वजह से इसे पढ़ना आपके लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। द पावर ऑफ नाउ, ए गाइड टू स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट, एक और टाल द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन पुस्तक है। इसमें टाल अपने विचारों को एक चर्चा के रूप में प्रेजेंट करते हैं जो बेहद आसान भाषा में लिखी गई है। इसकी भाषा बड़ी आकर्षक भी है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें टोल जो हमें समझाना चाहते हैं कि हम अपने आप से और दूसरों से कैसे बातचीत करते हैं, उसे बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। इस बुक में कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन और प्रेजेंट में रहने के बारे में इतनी सरलता से बताया गया है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। और इसे सिखाने के लिए और इसमें माइंडफुलनेस की सिंपल एक्सरसाइज को भी बड़ी आसानी और बारीकी से समझाया गया है। ये पुस्तक 1990 के दशक के लास्ट में पब्लिश हुई थी। इसे पढ़ने की सिफारिश ओपरा विनफ्रे ने भी की है। इसका 33 भाषाओं में अभी तक अनुवाद किया जा चुका है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये पुस्तक अरबी में भी उपलब्ध है। साल 2009 तक का जो अनुमान था कि इसकी कितनी कॉपियां बिक चुकी हैं, तो उत्तर अमेरिका में इसकी 30 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी थी। टोल की ये बुक एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की एक गाइड है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं तो यह आपको एक लंबी यात्रा पर ले जाती है, जिसमें आप अपने आप को, वास्तविक स्वयं को, ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में शांति खोजने के लिए लंबी यात्रा पर चले जाते हैं। अगर हम अपने आप को एथलीट के रूप में रखकर इस पुस्तक को देखते हैं तो हम इसमें कई ऐसे आइडियाज डिस्कवर करते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस के मेंटल एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने में सहायक होंगे। कई बार अक्सर हमें ये भी लग सकता है कि हम उदास महसूस कर रहे हैं, जिसका सीधा सा कारण है कि अपने जीवन में कुछ न कुछ तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, जो इस बात का संकेत होती है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं या कभी हमने किया है, तो ये हमें अपनी स्थिति को देखने और उसमें बदलाव करने के लिए प्रेरित करते हैं, बजाय हम डिप्रेशन में जाने के। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को सुनने की बहुत आवश्यकता है कि हमें ये जो हमारे अंदर से जो भावनाएं उठ रही है, ये क्या बताना चाह रही है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और न ही इन्हें नेगेटिव मानकर छोड़ देना चाहिए, जो सही नहीं है। ये पुस्तक हमें बताएगी कि हम अपने जो विचार हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, उस पर कैसे निगाह रखी जाए, उसे कैसे समझा जाए, उन विचारों का विश्लेषण कैसे किया जाए। और मेरा मानना है कि इस बुक में दिए गए जीवनोपयोगी ज्ञान को समझकर अपने ऊपर अगर हम लागू करते हैं, तो हम अभी जो कर रहे हैं या हम फ्यूचर में कुछ करना चाह रहे हैं, उसे ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे और उसमें ज्यादा सक्सेस प्राप्त करेंगे और चिंता मुक्त नई लाइफ जीने लगेंगे। हम महसूस करेंगे कि कभी मानो दुख तकलीफ हमारी लाइफ में आए ही न हो। मैं आपको ये पुस्तक पढ़ने की सलाह देता हूं, लेकिन इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना होगा कि आप इसका यूज अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, यानी ज्यादा महत्वपूर्ण पहलुओं को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे। आइए अब हम उन 5 ऐसे कारणों पर बात करते हैं जिन्हें इस पुस्तक को पढ़ने से पहले जानना बेहद जरूरी है कि आप इससे आखिर सीखना क्या चाह रहे हैं, आखिर आपका मोटिव क्या है इस बुक को पढ़ने का। तो अगर हम पर्पज बनाकर किसी बुक को पढ़ते हैं तो हम उस बुक में से वो जान सकते हैं जो हमें जानना है, और किसी भी बुक में जो सिद्धांत दिए जाते हैं उनका हम पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। वे जो सिद्धांत हैं, वे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है उसका भरपूर लाभ उठाने में लगे रहने में हमारी मदद करते हैं। इन 5 कारणों में सबसे पहला कारण यह है कि यह हमारी प्रेजेंस के बारे में हमें सिखाती है कि क्या हम अभी अपने आप को वर्तमान पल में महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हमारा उत्तर ना में है तो ये पुस्तक हमें सिखाती है कि इसे कैसे महसूस किया जाए और इससे क्या होगा। क्या वाकई वर्तमान में रहना इतना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, वो इस पुस्तक को पढ़ने से हम जान सकते हैं। राइटर के अनुसार हमारे पास जीने के लिए केवल प्रेजेंट मोमेंट होता है, यानी वर्तमान क्षण। आपके जीवन में ऐसा कोई दूसरा पल नहीं होगा जिसमें आप वर्तमान को जी सकते हैं, क्योंकि ये पल न तो कभी पहले आया था और न कभी आगे आएगा। इसी तो केवल वर्तमान में रहकर ही जिया जा सकता है। टोल के शब्दों में अगर हम बात करें तो जो वर्तमान पल है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा ही कुछ होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में पास्ट को भूलने की बीमारी होती है, जो टोल का नाउ है उसमें ये नहीं होता। आप इस बुक में सीखेंगे कि वर्तमान में कैसे आया जाए, क्योंकि हमारे पास यही तो एक अवसर है जिसमें आप अपने भविष्य के एक्शन को और ज्यादा परफेक्ट करने पर काम करते हैं। मान लीजिए आप एक बुक लिखना चाह रहे हैं, तो अभी आपको कुछ लिखना शुरू करना होगा ताकि भविष्य में आपकी बुक तैयार हो सके। हम सभी के पास केवल वर्तमान पल ही है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, ना तो हम पास्ट में जाकर कुछ बदल सकते हैं और ना ही हम भविष्य में जाकर कुछ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने वर्तमान पल के मालिक होते हैं, तब वास्तव में आप वह कर रहे होते हैं जो आपको करना चाहिए। इस बुक को पढ़ने का दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर हम अपने मन का अवलोकन करना चाह रहे हैं लेकिन इसे समझने के लिए कोई बढ़िया पुस्तक नहीं मिल रही है, तो यह सीखने के लिए द पावर ऑफ नाउ से बढ़िया कोई पुस्तक नहीं है। आप इस बुक के माध्यम से ये सीख सकते हैं कि हम अपने मन का अवलोकन, स्वयं का अवलोकन कैसे करें। मैं खास करके उन लोगों से ये इस बुक को पढ़ने का विशेष आग्रह करूंगा जो ज्यादा सोचते हैं और चिंता का अनुभव करते रहते हैं। ये बुक निश्चित रूप से उनके जीवन में बदलाव लाएगी, उन्हें ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। यह पुस्तक कहती है कि जब हम तथ्यों को और स्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब स्वीकृति के साथ ही कुछ हद तक हमें उनसे होने वाले विरोधाभास से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किन किन समस्याओं, तथ्यों और परिस्थितियों से परेशान हैं। ज्यादातर यह परेशानी तब आती है जब आप इन्हें स्वीकार नहीं करते, बल्कि इनके होने पर हम दुखी और परेशान होते रहते हैं। हम दुख को लंबा खींचते रहते हैं अपना समय देकर। हम अगर दुख को या परेशानी को समय ही ना दें तो वो लंबी नहीं खींचेगी, लेकिन हम अपना टाइम देकर उसको जीवित रखते हैं। और आप जानते हैं कि दर्द केवल दर्द को ही बुलाता है, वो आनंद को नहीं बुला सकता। इस पुस्तक से हम यह सीखते हैं कि कैसे हम परिस्थितियों को स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके एक शांत मनुष्य बन सकते हैं। जब हम परिस्थितियों, तथ्यों और इन समस्याओं को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये एक्सेप्टेंस जो है वो हमारे अशांत को प्रेमपूर्ण और कोमल आलिंगन में ले लेती है और आपकी जो अशांति है उसको शांति में ट्रांसफर कर देती है। टोल इस पुस्तक में एक ऐसा भी कहते हैं कि आपका जो दिमाग है असल में वो आपका नहीं है। इसे हमें कुछ समय लग सकता है समझने में, लेकिन अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारी भावनाओं के हिसाब से काम नहीं करता, यह दूसरों के रिएक्शन पर काम करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है जो आप क्लाइंट्स को बेचना चाहते हैं और आप नए नए क्लाइंट्स के पास जाते हैं, लेकिन वो इसको लेने से ज़्यादातर लोग मना कर देते हैं, नकार देते हैं। तब इस प्रोडक्ट के बारे में हमारे विचार क्या बन जाते हैं? धीरे धीरे हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार दौड़ने लगते हैं और इसी तरह बाकी के जो भी काम है उनमें भी नकारात्मकता और संदेह पैदा होने लगता है। इसलिए टोल इस पुस्तक में आपको यह सिखाने में मदद करते हैं कि इन विचारों को सक्रिय करने के बजाय अपने दिमाग में उठने वाली भावनाओं को हम कैसे इंस्पेक्ट करें, कैसे उनको देखें, ताकि आपके अंदर जो अलगाव पैदा करने वाले विचार चलने शुरू हो रहे हैं उन्हें मस्तिष्क से हटाकर हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सीख सकें, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आप केवल भावना नहीं है, आप एक ऑब्जर्वर हैं। और आप ऑब्जर्व क्या करते हैं कि आपके जो वर्तमान पल पर जो अतिक्रमण हो रहा है, जो इंक्रोचमेंट हो रही है या इंक्रोच करने की जो नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता कोशिश कर रही है, उससे आप जागरूक हैं। आप अपने माइंड को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं उनके प्रति सजग हैं। आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद यह संकल्प ले सकने में सक्षम हो जाएंगे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लिए और दर्द पैदा नहीं करूंगा। इसे पढ़ने का और इससे यह ज्ञान लेने का तीसरा बड़ा कारण है कि हम अपने पास्ट यानी भूतकाल को स्वीकार न करने में कैसे सक्षम होंगे। हम इससे सीखते हैं कि कैसे अपने वर्तमान से निराश होने की बजाय हम प्रेरित हो सकें। अतीत में कुछ चीजें उस तरह से नहीं दिखती होंगी जैसा आप देखना चाहते थे। आप अभी भी उन तथ्यों और घटनाओं का विरोध कर रहे हैं जो अतीत में घटित हुई थी। आपका मन हमेशा से ही वर्तमान पल को नकारने और इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन आप जितना ज्यादा वर्तमान पल का सम्मान करेंगे, आप उसे स्वीकार करने में उतने ही ज्यादा सक्षम होते हैं और आप उतने ही ज्यादा दर्द से मुक्त होते जाते हैं। इसमें टोल आपको जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करने की सलाह देते हैं, जैसे कि उन्होंने स्वयं इसे चुना था। इसमें आप ये भी सीखते हैं कि अतीत ने आपके वर्तमान पल को कैसे प्रभावित किया है और फिर आप वहां से अपनी वर्तमान स्थिति के साथ काम करना शुरू कर देंगे। द पावर ऑफ नाउ को पढ़ने का चौथा कारण है आपका असफलता का डर, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर आप इस डर की वजह से कुछ शुरू करने, बदलने या छोड़ने के लिए रुके हुए हैं ना, तो आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। आप ये तो जानते हैं कि कुछ ना करने के बजाय कुछ ना कुछ करना बेहतर होता है, और जब हम कुछ ना कुछ करने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई गलती होती है, और उस गलती से कम हम सीखते तो हैं। तो फिर जब आप कुछ ना कुछ सीखते हैं तो फिर वो गलती कैसे हुई? गलती नहीं है, बल्कि उसे न करना हमारा असफलता का डर होता है। जोखिम लेने और असफल होने का डर लगभग सभी में पाया जाता है, क्योंकि हर किसी को अनसक्सेस की वजह से जो दुख भविष्य में होने वाला है, उस दुखी मन की कल्पना की पीड़ा से निपटना बेहद मुश्किल लगता है। कोई भी इंसान अपने फ्यूचर में होने वाले दुख से बहुत ज्यादा डरता है, उसे हम असफलता का डर ही तो कहते हैं। इससे आप यह समझना सीखते हैं कि आप वर्तमान क्षण का सामना कर सकते हैं, फिर चाहे वह भविष्य में आने वाले क्षण के रूप में कितना भी नकारात्मक क्यों न हो। ये आपको खुद को जीवन में मिलने वाले मौके लेने और फिर सफल या असफल होने और सीखने की स्वतंत्रता देता है। और इस पुस्तक को पढ़ने का लास्ट बट नॉट लीस्ट पांचवा कारण जो है, वो आपका अपने भविष्य के बारे में सोचने का तरीका। हम भविष्य के बारे में कैसे सोचते हैं, उसे ठीक करने, उसे समझने के लिए ये पुस्तक बेहद आवश्यक है। अगर आपको मेरी बात कुछ कड़वी लगे तो मुझे माफ करना, परंतु मुझे ये बताना तो पड़ेगा कि हम सब साथियों में ज्यादातर में पास्ट में कुछ हुआ है या फिर फ्यूचर में कुछ होने वाला है, ऐसा होने वाला है, उसमें ज्यादातर खोए रहने में आनंद आता है। जैसे एक दिन मैं ये कर लूंगा, एक दिन मैं ऐसा हो जाऊंगा, एक दिन ये होगा, एक दिन मैं वो करूंगा, या पीछे क्या हुआ था, पहले ऐसा हो गया था, पहले वैसा हो गया था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है हमने जो लक्ष्य तय किए हैं वो हमारा सारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, और हम वर्तमान क्षण को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, जो कि आपका भविष्य बनाने वाला एक सबसे शक्तिशाली साधन है। आप एक पाठक के रूप में जानते हैं कि ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा जगह होती है। कुछ बड़ा करने की आकांक्षा रखना हमारे जीवन का हिस्सा है, और यह विशेष रूप से आप जैसे के लिए एक प्रतियोगी होने की प्रकृति का हिस्सा भी होता है। बहुत बार आपने कुछ लक्ष्य बनाए होंगे, वो उसी टाइम समस्याग्रस्त हो जाते हैं जब वे प्रोसेस और आपकी डेली लाइफ का आनंद आपसे छीन लेते हैं। पुस्तक के अनुसार आप वर्तमान पल में रहने में सक्षम अगर होते हैं तो आप जो कर रहे होंगे वह आपके लक्ष्य को पूरा करने की यात्रा को बेहद सरल व सुगम बनाएगा। तब आप अपनी आंतरिक स्थिति से, अपने इंटरनल प्रेजेंस से मेल खाने वाली हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेंगे और उसे प्रकट करने में सक्षम हो जाएंगे। इस पुस्तक ने लाखों पाठकों के जीवन में बदलाव लाया है। इसने वास्तव में उन लोगों को सिखाया है कि पास्ट पर रोने की बजाय वर्तमान में जीना कितना महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक आप में एक ऐसी आभा पैदा कर देती है जिससे आप संसार को एक नई रोशनी में देखने में सक्षम हो सकते हैं। यह आपके जीवन, आध्यात्मिकता, डेस्टिनी और मेंटल हेल्थ के बारे में आपके सामने आने वाले सभी सवालों का जवाब है। यह आपको जीवन का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है जो आपको अपने आप को स्वयं के अंदर खोजने में मदद करेगा। दैट ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। थैंक्स टू ज्वाइनिंग अस ड्यूरिंग दैट नॉलेजेबल डिस्कशन ऑफ वाई रीड द पावर ऑफ नाउ बुक। आई होप दैट यू हैव गोट इनफ रीजन टू रीड दिस बुक सो दैट इट कैन प्रूव बेनिफिशियली फॉर यू। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग टू वाई रीड बुक्स पॉडकास्ट। आप किसी भी हिंदी ऑडियो बुक को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट hindiaudiobook.com पर जाकर क्लिक करके ऑडिबल का 30 दिनों तक फ्री सब्सक्रिप्शन लेकर उन्हें सुन सकते हैं। यह लिंक आपके लिए नीचे पॉडकास्ट नोट में भी अवेलेबल है, जहां से आप इसे क्लिक कर सकते हैं। इफ यू एंजॉय दिस शो प्लीज रेट एंड रिव्यू अस ऑन स्पॉटिफाई पॉडकास्ट। दिस इज यश माकड़ एंड डोंट फॉरगेट व्हाई रीड बुक्स मींस पर्पजफुल रीडिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम हैप्पी लिसनिंग।